आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
मेलबोर्न स्थित गौरव और सोनाली महाजन भारत में थे जब उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के पैरों पर चोट के निशान देखे। उनकी बेटी रिया, जो उस समय 11 वर्ष की थी, उसे बुखार हो रहा था और थकान महसूस हो रही थी। परीक्षणों से पता चला कि रिया के रक्त में प्लेटलेट्स का स्तर बेहद कम था। सामान्य सीमा जो 1,50,000 से 4,50,000 के बीच है, रिया के प्लेटलेट्स की संख्या 4,000 थी।
शुरुआत 2 साल पहले हुई। ये रिया तब 11 साल की थी, तो इसको कंटिन्यूस फीवर्स हो रहे थे और लेग में ब्रूजेज आ रहे थे। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसका ब्लड टेस्ट करें। तो जब हमने ब्लड टेस्ट किया तो पता लगा कि इसके प्लेटलेट्स काफ़ी लो हैं। तो उसके बाद फिर इसका डायग्नोसिस हुआ कि ये एप्लास्टिक एनीमिया है, विच इज़ अ बोन मैरो फेलियर।
इसके बाद परिवार ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया की वापसी की।
हमें इमीडिएटली डिसीजन लेना था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अंडर 10,000 प्लेटलेट्स थे, सो विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। डायग्नोसिस ये था कि या तो ल्यूकीमिया है या एप्लास्टिक एनीमिया है। एज सून एज जब इसका प्लेटलेट्स उन्होंने ट्रांसफ्यूजन किया और स्टेबलाइज किया, फिर हमने तुरंत मेलबर्न के लिए फ्लाइट पकड़ी। और जैसे ही मेलबर्न हम उतरे फ्लाइट से, हमने सीधा रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की तरफ हम गए। तो रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 5-6 महीने इसको ट्रांसफ्यूजन होते रहे, काफी इसकी इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी चली। डॉक्टर ने सजेस्ट किया इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा।
गौरव बताते हैं कि बोन मैरो के लिए परफेक्ट मैच ढूंढना काफी परेशानी वाला था और साथ में इस सब का मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाला परिणाम भी बहुत गहरा था।
बोन मैरो एक वर्ल्ड वाइड डोनर बैंक होता है, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया। तो उसमें एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर कोई इसका सिमिलर मैच हो बोन मैरो का रिया से, तो वो आपको उपलब्ध करा देते हैं। पर हमें काफी 2-3 महीने हमने वेट किया, पर कोई हमें मैच मिला नहीं। तो मेरी वाइफ और मैं दोनों 50% मैच थे। जो हमारे डॉक्टर थे रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, उन्होंने रेकमेंड किया कि हम 50% मैच ट्राई करें, क्योंकि जो ट्रांसफ्यूजन भी अगर लॉन्ग टर्म करते रहे तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है बाकी ऑर्गन्स पे। 50% मैच के की अलग कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्योंकि उसमें कीमोथेरेपी होती है और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है। अलग वार्ड में रखा जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। 3 महीने रिया हॉस्पिटल में रही। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद भी फिर कुछ देर रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जब आप डिस्चार्ज भी हो जाते हो तो घर पे भी आइसोलेट रहते हो थोड़ी देर। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए रिया आइसोलेटेड थी, किसी को मिल नहीं सकती थी, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है। तो मैं और मेरी वाइफ के अलावा भी हम अलाउड नहीं थे कि किसी और को रिया मिल सकती है। तो जो फिजिकल हार्डशिप तो बच्ची ने सही है, उसके साथ फिर जो इसका मेंटल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते किसी को, वो डिफिकल्ट पार्ट था।
दुनिया में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इंजीनियर्ड ब्लड स्टेम कोशिकाएं बनाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में पाई जाती है, और उन्हें सफलतापूर्वक चूहों में प्रत्यारोपित किया गया है। उनका यह कहना है कि भविष्य के उपचारों में मरीज की त्वचा, रक्त या बालों का नमूना लेना, उनकी कोशिकाओं को फिर से प्रोग्राम करना और उन्हें वापस मरीज में स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। मड्रॉक चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एड स्टैनली अध्ययन में शामिल थे।
दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पोटेंशियली कुड बी यूज्ड टू रीजेनरेट देयर ब्लड स्टेम सेल्स एंड गिव देम बैक अ वर्किंग बोन मैरो।
कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि जानवरों पर किए गए अध्ययन सही नहीं है और इंसानों में क्लिनिकल परीक्षण में लगभग 5 साल बाकी हैं। लेकिन उनकी खोज एक दिन डोनर्स की कमी को दूर कर सकती है। प्रमुख शोधकर्ता एसोसिएट प्रोफेसर एलिजाबेथ निंग बताती है कि उन लोगों को होने वाले दुष्प्रभावों को भी कम कर सकता है जो पूरी तरह से मेल खाने वाला डोनर ढूंढने में असमर्थ हैं।
They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated with blood stem cells that they get from a donor.
गौरव मानते हैं कि ऐसे समय में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और परिवार का समर्थन काफी महत्वपूर्ण है।
मैं रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही दया भावना से और ईमानदारी से इसका इलाज किया, और के वहाँ पे जो टीचर्स थे हॉस्पिटल में और नर्सेस थे, सपोर्ट स्टाफ थे, उन्होंने बहुत इसका अच्छी तरह से ख्याल रखा। पर्सनली जैसे आपने कहा कि एक पेरेंट के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है टू सी कि आपकी जो बच्चा है वो पेन से गुजर रहा है। आपका जो परिवार है, जो इमीडिएट परिवार है, जैसे मेरे माता पिता, मेरी बहनें, उनसे मैं रेगुलरली बात करता रहता था, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें और हमें इनकरेज करते रहते थे। और दूसरा कुछ आपकी जो पर्सनल फिलॉसफी होती है लाइफ में कि हमने हमेशा यही सोचा था कि आप अपना कर्म करते रहो और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, तो मैं पर्सनली तो यही अपनी पूरी जो भी मैं कोशिश कर सकता था पूरी हिम्मत और मेहनत से करता रहा, और बाकी मुझे विश्वास था कि हम अगर कुछ ऐसे लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा हमें। अल्टीमेटली इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और बच्ची अब आगे से काफी ठीक है।
इस तरह की बड़ी बीमारी से गुजरने वाले बच्चों के लिए रिया भी एक संदेश देती है।
Well, I can't do anything exactly, but I can say that after it's finished, you know, after you get your life back on track, it can feel like it was a dream or a very long time ago. So just focus on the end result and not the present.
शोधकर्ता बताते हैं कि प्रौद्योगिकी की गति और लागत ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता होगी, लेकिन गौरव ये मानते हैं कि उनके जैसे परिवारों के लिए ये जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। SBS न्यूज से एबी ओब्रायन और SBS हिंदी से ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की प्रियंका हतवर्ण ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।